PlayStation. सभी सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आतिफ आपके साथ इस प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं आतिफ ऑन सनराइज। हर मंगल और बुध की रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप ये प्रोग्राम सुनते हैं एफएम सनराइज 96 की फ्रीक्वेंसी पर साहिवाल फैसलाबाद और इसके गिर्दो नवा में। इसके अलावा ये प्रोग्राम पेश किया जाता है वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट की लाइव स्ट्रीम पर urduvoa.com लिखकर। अगर आप वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की वेबसाइट पर आइए तो आपको इस वेबसाइट पर इस प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग विंडो दिखाई देगी, उस पर प्ले का बटन दबाइए और प्रोग्राम सुनना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर भी पेश किया जाता है हर बुध और जुमे रात को वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू रेडियो ट्रांसमिशन में, जो कि सुनी जा सकती है 972 मीडियम वेव पर। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर बुध और जुमे रात की सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पाकिस्तान में। मोहम्मद आतिफ का बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आप सभी सुनने वालों को, और वेलकम करते हैं हम साहिवाल से बिलाल जट को। बिलाल कैसे मिजाज हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, करा का पाका करा। मैं आप सुनाइए, आपके कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है,
मिजाज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बताइए कि साहिवाल के लोगों ने कल जो हमारे साथ हुई है उसको कैसे लिया?
ना ही पूछे तो अच्छा है।
अच्छा, अच्छा मतलब वैसे क्या एक एक, एक, एक जनरल फीडबैक क्या है ना?
फीडबैक यही है कि पाकिस्तान ने यही कहा कि जनाब बहुत जल्द घर आ जाएगा वर्ल्ड कप से भी।
अच्छा, वैसे मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई उनमें से अक्सर लोगों ने ये कहा कि बहुत ही इतनी कमजोर टीम पाकिस्तान ने जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की उसमें पहले कभी नहीं भेजी, तो देखते हैं। बहरहाल इस बारे में आज हमें बात करनी है। अपने सभी सुनने वालों को बता दें जी कि कल पाकिस्तान के साथ जो हुई है उस पर हमने बात करनी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही बुरी शिकस्त से दोचार हुआ है पाकिस्तान, 110 रन्स की शिकस्त हुई है जी, बल्कि जी हाँ 110 रन्स की शिकस्त हुई है, 120 रन्स की शिकस्त हुई है एक्चुअली। पाकिस्तान गॉट ऑल आउट एट 250 एंड वी हैड टू चेज 370, तो 120 रन्स की शिकस्त हुई है जी पाकिस्तान को। इससे पिछला मैच जो था वो भी हम बहुत बुरी तरह से हार गए थे न्यूजीलैंड ने, हमने उसमें पहले बैटिंग की थी, न्यूजीलैंड ने चेज कर लिया था। बहुत सारे मसाइल हैं टीम के अंदर, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तानी टीम की जो क्वालिटीज हैं उससे मुतल्लिक, और इन सारी चीजों पर हमने बात करनी है आज के इस प्रोग्राम में, जैसे कहते हैं आतिफ ऑन सनराइज। और आज के प्रोग्राम में हमें क्रिकेट के हवाले से ही बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट के मामला से अक्सर व बेशतर वाबस्ता रहे हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो एक सरप्राइज है। कुछ देर में हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, लेकिन वो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होगी 9:15। मैं 10:15 क्यों कह रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। तो 9:15 आप अपने रेडियो सेट्स के साथ रहिए और 9:15 हम उनको प्रोग्राम में ऑन एयर लेंगे, और फिर उनसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, उसकी सिलेक्शन, उसके पोटेंशियल, वर्ल्ड कप क्या किया जाना चाहिए, कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। और बिलाल ये बताइए कि आपने मैच वैसे देखा पूरा?
मैंने पूरा नहीं देखा, स्टार्ट देखा था मैंने तकरीबन जब 120 रन था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज जो है हम लोग जीत जाएंगे जी। तो लेकिन उसके बाद जनाब मैं उठ के आ गया हूँ, उसके थोड़ी ही देर बाद जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान कितने आउट हो चुके, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया।
ओहो, मैंने
क्योंकि
तो
जब स्टार्टिंग
जी मैंने तो जब 369 रन का टारगेट देखा तो उसके बाद मैं सो गया। मैंने सोचा
लेकिन मुझे उम्मीद जी मैं
जी आप क्या कह रहे हैं?
क्या, मुझे उम्मीद थी जब इन्होंने स्टार्ट लिया, स्टार्ट काफी अच्छा मिला था क्योंकि 100+ स्कोर हो चुका हुआ था उस वक्त, हमारी कोई विकेट भी नहीं गिरी थी और हमारी उस वक्त स्ट्रॉन्ग बैटिंग भी चल रही थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज दोनों ही। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब जब ये सेट हो चुके हैं उम्मीद है कि अब अच्छा खेलेंगे आगे, लेकिन एक अहमद शहजाद की गलत शॉट की वजह से अहमद शहजाद आउट हुए हैं, उसके बाद यूनुस खान ने गलत शॉट कैच दे दिया वही उसी जगह पे उसी शॉट को खेलते हुए, तो वो थोड़ा सा वहां पे जाकर पता चला कि अब जनाब ये ना अब जाने वाले हैं। तो उम्मीद थी कि शायद कुछ कर दे, लेकिन ये देखे क्या हुआ, बैटिंग पिच थी उसको भी उन्होंने मद्देनजर रख के खेलना चाहिए था इनको पूरी टीम को, लेकिन बाहुकमे खुदा
हाँ जी, मतलब है दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि एंड में हम
अच्छा
सारी चीजें अल्लाह की मर्जी और किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी
बिल्कुल
तभी शामिल होती है जब कोई मेहनत की जाए, कोशिश की जाए। लेकिन खैर, इस बारे में मजीद बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं बिलाल कि एक गाना प्ले करते हैं शो में, और उससे पहले हम अपने सुनने वालों को ये भी बता दें जी कि आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आप
बिल्कुल
कोई भी सवाल करना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कल की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में, आपके जहन में कोई भी सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड, तो आप वो सवाल हमें टेक्स्ट पे भेज सकते हैं, जो टेक्स्ट नंबर्स आपको बिलाल अब से कुछ देर में बताएंगे। और बिलाल, हम ऑफ द एयर कॉल्स पे सवाल ले सकते हैं क्या?
ले तो सकते हैं लेकिन नहीं ले सकते।
ले तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं ले सकते। तो ठीक है जी,
हाँ
फिर
जी बिल्कुल
कोशिश ये करते हैं कि आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अपने सवालात भेजिए, और आपके सवालात फिर हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और
आपके जो
पूछेंगे।
सवालात हैं हमको।
एंड आई थिंक देयर इज एन इश्यू विद द वॉइस। बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है विद द कॉल
जी
कॉलर?
अब आ रही है, पहले
अच्छा जी,
कुछ डिस्कनेक्ट हुई थी अब ठीक है। थैंक
अच्छा जी।
यू।
तो आप कह रहे थे कि सवालात किस नंबर पे भेजे जा सकते हैं?
मैसेज करके जनाब आप हमें आप मैसेज कर सकते हैं, नोट से लिखना है स्पेस देना अपना प्यारा सा नाम और जो सवाल आप हमसे करना चाहते हैं, जो हमारे गेस्ट हैं उनसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से या क्रिकेट टीम के हवाले से, वो आप हमें लिख भेजेंगे 8282 पे, और आपकी कॉल जो लाइव लेंगे वो 04040111906 वहां पे आपकी लाइव कॉल लेंगे, यहाँ पे आप हमें कॉल करेंगे।
जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि लाइव कॉल्स में भी आपसे क्रिकेट पे ही बात होगी। अगर आप क्रिकेट के अलावा हमारे मूड को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कोई और बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम
जी
क्रिकेट पर ही बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी, लेट्स मूव ऑन। पहला गाना चलाते हैं प्रोग्राम में, पहले गाने के बाद आएंगे वापस, थोड़ी और बात करेंगे और आपको बताते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में आज कौन सी क्रिकेट सेलिब्रिटी हैं जिनसे हमने बात करनी है। जवाद अहमद को सुनिए ढोलना, और मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
स्टे ट्यून्ड।
आके वसना एक गल याद रखना, एक गल याद रखना, न कटन दिन ना लंगे रात, कलम कली मैं बेजार, अखां लाइयां मोती लड़ियां वांगू चढ़ियां, समुंदर पार हर दम आवे तेरी याद, पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां, आ जा हुन ढोल
आप सुन रहे हैं जवाद अहमद की आवाज. सॉन्ग था ढोलना, असद जीना नहीं तेरे बिना ढोलना. तू गयो समंदर पार ते पल पल आवे तेरी याद. समंदर पार पाकिस्तानी टीम भी मौजूद है जो कि हमारी यादों में भी है, हमारी ख्वाहिशों में भी है, हमारे दिलों में भी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है हमारी दुआओं में भी है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, यानी पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम यादों से, दिलों से और हर चीज से निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बिल्कुल बदल जाए.
आंसू भी आ रही है
यकीनन आंसुओं में बहकर भी निकली होगी ये याद जब कल का मैच हमने देखा होगा. लेकिन कोई बात नहीं, खेल है, खेल के दौरान ये सब कुछ होता है, लेकिन कोशिश ये है कि किसी तरह से इसको तब्दील कर दिया जाए, जो बुरी परफॉर्मेंस है वो पीछे रह जाए और आगे चलकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के पहले, अभी शहजाद बहुत लंबा बोल रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जरा छोटे छोटे से क्यूज दे दें हमारे साथ. मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने आपको बताया था कि जो सेलिब्रिटी आज क्रिकेट सेलिब्रिटी हमारे साथ है, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नाम है, कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बहुत ही मायानाज बैट्समैन और پارٹ ٹائم بالر بھی رہے ہیں بلکہ فل ٹائم بالر کے طور پر بھی انہوں نے پاکستان کی کرکٹ میں حصہ لیا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں عامر سہیل صاحب کے لیے. عامر سہیل صاحب کا نام پاکستانی کرکٹ کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. چیف سلیکٹر رہ چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کے ساتھ, مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں, مختلف طریقے سے ایسوسیٹ رہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. تو عامر سہیل کو ویلکم کرتے ہیں. جی عامر سہیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو اس پروگرام میں. تھینک یو عامر سہیل صاحب. میرا خیال ہے کل کے میچ کی بات اگر کی جائے تو اس میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بحث بھی کی جانی چاہیے, لیکن میں چاہوں گا کہ مستقبل کے بارے میں بات کی جائے. دیکھیے اب جو ٹیم سلیکٹ ہو گئی, عامر سہیل صاحب وہ ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ٹیم کے اندر 10 وکٹیں لینے کا پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا, اور اب بیٹنگ پرفارمنس دیکھ کے 50 اوور کھیلنے کا پوٹینشیل بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں اب جو چند دن رہ گئے ہیں اس سے پہلے کیا کیا جانا چاہیے؟
آپ نے پوائنٹ ریز کیا, میں اسے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. اب ٹیم سلیکٹ ہو گئی, اب جو ہے وہ 30 تو نکل چکا ہے
جی.
اب اگر آپ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ لڑکے اتنی دیر سے اچھا رسپونڈ نہیں کرے
جی,
یہ تو آپ اتنا بڑا کوچنگ ریس آپ دیکھیں کہ جو اسپورٹس ہے اس میں سائنس مکس ہو گئی ہے
جی.
دوسری ٹیم میں جو ہے وہ اپوزیشن کی ویکنیسز کو نوٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ نے جو جو پلیئرز ہیں ان کو رول چاؤٹ کیا جاتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اگر آپ کا پلیئر پرفارم نہیں کر رہا, جس طرح سب سے بڑی اگزامپل آپ کے پاس یونس خان کی ہے, اگر یونس خان سے ہٹنگ نہیں لگ رہی تو آئی تھنک فار گاڈ سیک سمبڈی ہیز ٹو سیٹ ہم ڈاؤن اینڈ سے کہ remember that 92 world cup جس میں جاوید میاں داد had a certain role and how well he did that, can you take that role, can you take that responsibility, آپ رانا بال کرو سنگلے کر کے دوہرا چوکے مارا
جی,
ایٹ لیسٹ آپ تھوڑی اسمبلنس آئے گی. آپ نے بالرس کو بتایا ہے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, جو انگریزی میں کہتے ہیں برن مڈ نائٹ آئل, دے ہیو ٹو ڈو دیٹ
رائٹ. لیکن عامر سہیل صاحب, ایک اتنی ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اس وقت نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں. آپ نے جیسے یونس خان کی بات کی, یونس خان کو اب مزید بیٹنگ کوچنگ کی تو شاید ضرورت نہیں ہے, ہی ہیز سو مچ ایکسپیرینس بہائنڈ ہز کیریئر.
بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوچنگ کی ضرورت ہے, at times he doesn't understand that he's making too many mistakes. Aur jahan pe aake aapko ye jo international cricket mein jo coaches ka jo concept hai wo foreign uske nishan dehi karta hai
ji,
and they make you practice. Mere samne bhi aisa hua hai ji. I was scoring pehla test series in Australia, they were too much struggling ji, and main ek practice kar raha hu ke coach jo Buchanan the it took him to the next. ایک بڑی اسپرٹ اسکرین کے اوپر ان کو بتا رہے تھے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دس, اس کے پریکٹس کر رہے ہیں, دی میچ میں انہوں نے سو کر دیا. سو دیر آر سو مینی ایگزامپل آئی کین گیو اٹ ٹو یو.
ٹھیک,
یہ تو کرنا ہوگا. اس وقت جو ہے وہ رائٹ فرینڈ آف مائنڈ میں نہیں ہے, وہ جا کے چوکے چھکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آؤٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو آئی تھنک سمبڈی ہیز ٹو سٹ ہم ڈاؤن, ریورس رو, آسک ہم ٹو اسپینڈ سم ٹائم, رن بال کر کے دو یار
جی. اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور انڈائریکٹ بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ 3-4 اور پلیئرز کو کھلائیں گے, اگر رن بال کرتے رہیں گے, ایک اینڈ سے وکٹ بھی روک لیں گے اور اپنے ساتھ آنے والوں کو کھلاتے رہیں گے, تو اس سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پارٹنرشپس بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گی, اننگ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. عامر سہیل صاحب, آپ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین رہے, آپ نے لیفٹ آرم آرتھوڈاکس اسپن بھی کی اور بہت بہت زیادہ ٹیم کو سپورٹ دیا, ایک بالر کی جگہ لی, پانچویں بالر کی حیثیت سے کبھی کبھار آپ نے 10 اوور بھی پھینکے, لیکن 7-8 اوور آپ मैचेस में फेंकते रहे। हमारे पास हारिस सोहेल को हमने ट्राई किया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर, कल के मैच में जब उनकी बॉलिंग हमने देखी, उससे पिछले मैच में उनको सिर्फ 4 ओवर्स दिए गए थे, कल के मैच में भी जब हमने उनकी बॉलिंग देखी तो ऐसे लगा कि हारिस सोहेल से जबरदस्ती बॉलिंग करवाई जा रही है। उनके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले, चाहे वो फुल टाइम स्पिनर हो या पार्ट टाइम स्पिनर हो, उसके पास होना चाहिए।
देखिए, आपका ये जो जो कंसर्न है बिल्कुल सही कंसर्न है, बिकॉज जो जो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी रीजनल रिप्रेजेंटेटिव टीम्स बनती है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर या अंडर 19 लेवल के ऊपर, आपका एम्फोसिस नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी, 1975 का जो वर्ल्ड कप था, 75 की बात कर रहा हूँ
जी,
उसमें क्लाइव लॉयड बॉलिंग करते थे, वेब रिचर्ड बॉलिंग करते थे पार्ट टाइम
जी,
फिफ्थ बॉलर के तौर पे। उसके बाद आप दूसरे वर्ल्ड कप में आ जाए, उसमें लैरी जोन्स आ गए, विव रिचर्ड खुद बॉल करते थे। अब थर्ड वर्ल्ड कप में आ जाए, यही सारा पैटर्न तो जो इंडिया की टीम जीती उनके यशपाल शर्मा बॉल करते थे, कीर्ति आजाद बॉल करते थे, रॉजर बिनी उनके ऑलराउंडर थे, सो दे हैड क्वाइट अ फ्यू बैटिंग ऑलराउंडर। फिर आप 92 के वर्ल्ड कप में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया जब पहली दफा वर्ल्ड कप जीती तो सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। हम जो अपने क्रिकेट चला रहे हैं विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन चला रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव लेवल के ऊपर आपने बैटिंग ऑलराउंडर्स को प्रेफर करना रादर देन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। बॉलिंग ऑलराउंडर जो है, अगर आपको जाक कैलिस की तरह मिल रहा है तो फिर तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू हैव बैटिंग ऑलराउंडर्स। हिस्ट्री आपको बता रही है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास बॉल करने वाले बैट्समैन ही नहीं है। एक मोहम्मद हफीज से आपने उनको जबरदस्ती टेस्ट मैच में बॉलिंग करा के उनको बैन करवा लिया
जी,
तो ब्रेनलेस सारा कुछ है।
राइट, अच्छा, मोहम्मद हफीज का तो जो प्रॉब्लम आ गया बॉलिंग का वो आ गया। अब ये देखिए कि हमारे पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, अनफॉर्चुनेटली जुनैद खान अनफिट हो गए हैं, उनकी जगह अब हमें एक बॉलर डालना है। अब हमने ट्राई कर लिया बिलावल भट्टी को, बिलावल भट्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही, न जाने क्या वजह है कि उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे बिलावल भट्टी एक टीयर टू टीम के मेंबर हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर लाया गया है। 93 runs in 10 overs, पूरे स्पेल में या तो वो फुल थे या वो शॉर्ट थे या फुल थे या शॉर्ट थे, कहीं पर भी वो अपनी लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाए। अब आप हमारे पास जो चॉइसेस आ रही हैं आमिर सोहेल साहब, वो हैं वहाब रियाज तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम एक नया बॉलर ऐड करें तो उसमें नाम आ रहा है सोहेल तनवीर का, राहत अली का नाम भी अब लिया जा रहा है। आमिर सोहेल साहब, इमरान खान कहाँ चले गए? उन्होंने दुबई में इतनी अच्छी बॉलिंग की, उनको क्यों हमने एकदम से साइड पे कर दिया?
देखिए, यहाँ पे भी यू नो वी हैव मिस्ड अ ट्रिक। अगर मैं आपको दोबारा हिस्ट्री में ले जाऊं तो आप जितने भी बॉलिंग अटैक देख रहे हैं, जो हमने भी वर्ल्ड कप जीता 92 में, अगर आप उसकी बॉलिंग जो अटैक था, एक बॉलर तेज था और दूसरा स्विंग करने वाला था आखिर जावेद, और वो जो स्विंग करने वाला बॉलर था उसने काफी ज्यादा बैट्समैनों को तंग किया। अगर आप ग्लेन मिर्ज़ा की बात करें तो उनके साथ बॉलिंग की फ्लेमिंग ने, जब फ्लेमिंग टीम से बाहर हुए तो उसके बाद मेरा ख्याल है गिलेस्पी ने स्विंग किया गेंद को। हमने आज तक ये चीजें देखी नहीं है कि विनिंग पैटर्न क्या है, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है। जब तक हम लोग ये चीजें करेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि यू नीडेड समबडी एज अ न्यू बॉल बॉलर जो गेंद को स्विंग करता, और जिस तरह इरफान जो है बैटफुट के ऊपर प्लेयरों को लेके जा रहे हैं तो आगे फेंकने वाला काफी ज्यादा तंग करता। सो वी हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा कि बिलावल जो पाकिस्तान टीम का काफी अच्छे से हिस्सा है
जी,
आप मुझे ये बताएं कि अ पर्सन लाइक वकार यूनस, व्हाट इज ही डूइंग
जी?
इमरान खान ने तो वसीम अकरम और वकार यूनस और पता नहीं कितने बॉलर्स को गना लिया था
जी।
अभी तक यू हैवंट सीन तो कोई फास्ट बॉलर आता जो वर्ल्ड क्लास बनाओ।
एग्जैक्टली, आपके ख्याल में क्या वजह है? मतलब वकार यूनस फास्ट बॉलिंग की दुनिया में इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया, पाकिस्तान क्रिकेट में इतना बड़ा नाम, और एक इतने लेजेंडरी फास्ट बॉलर के होते हुए हमारी बॉलिंग ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है कि लग रहा है कि ये तो जैसे क्वालिफाइंग राउंड खेल के कहीं वर्ल्ड कप खेलने जा रही है।
मेरा पॉइंट यही है कि यू नो दे आर गेटिंग पेड एंड देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइड इन्वॉल्वड कि हमारे इतने बड़े नाम है और इन बॉलर्स को रोज आके मार पड़ रही है, तो वी हैव टू कम टू द पार्टी। we have to start showing, you know, doing contribution and results should be evident. लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है. अब जो लड़के हैं जो मेरे ख्याल में जिनको प्रोग्रेस करनी चाहिए वो तो प्रेशर में क्रम्बल कर रहे हैं. आई थिंक इनको इन्फॉर्मेशन इन्हें दी जा रही है कि आपने बॉलिंग करने की तरह लाइक आई सेड बिफोर जब हम लोग भी बैटिंग करने जाते थे तो हमें पता था कि हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग हुई होगी और किस चीज से बचना है.
जी
दूसरे प्लान करके आपके खिलाफ आते हैं तो हम क्यों नहीं प्लानिंग करते. हम वही पुराने जमाने वाली बात शाबाश शाबाश जान मारो जान मारो. सिर्फ जान मार रहे थे तो नहीं होता, जान तो गधा भी मारता है.
जी आप दुरुस्त करें. अच्छा आमिर शाह साहब वहाब रियाज को कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप? चलिए और कुछ नहीं तो वहाब रियाज के पास पेस है. वहाब रियाज अपनी पेस के जरिए विकेट्स निकाल के दे दिया करते थे. एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि पेस नहीं कर रहे, जो स्विंग नहीं कर रहे, तो उसमें वहाब रियाज वो हाउ डू यू कंसिडर वहाब रियाज? विल ही बी अ गुड चॉइस इन दैट केस?
बात यह है कि अब इन प्लेयरों की जो प्रोग्रेशन नहीं हो रहा कि एक एक अगर आप गुड प्लेयर हैं फ्रॉम अ गुड प्लेयर यू नॉट टर्निंग इनटू अ वेरी गुड प्लेयर और अगर आप वेरी गुड प्लेयर हैं यू नॉट टर्निंग इनटू एक्सीलेंट प्लेयर और एक्सीलेंट से आप ग्रेट प्लेयर की तरफ नहीं जा रहे. तो ये जो प्रोग्रेशन नहीं हो रही हमारे क्रिकेटर्स की ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग चीज है और इसके ऊपर आई थिंक प्लेयर्स का ऊपर तो ब्लेम आते ही आते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट और जो आपका इतना बड़ा कोचिंग पैनल है आई थिंक इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6-7 पीपल और वो अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो दिस इज अलार्मिंग.
राइट और अब स्पिन की तरफ आमिर सोहेल साहब, मुश्ताक अहमद कोचिंग कर रहे हैं, यासिर शाह को जो फुल टाइम स्पिनर है उसको हमने बाहर बिठाया हुआ है, पार्ट टाइम स्पिनर से हम काम चला रहे हैं. हमने देखा कि अहमद शहजाद ने कल हर ओवर में कम से कम 2 बुरी बॉलें की. कुछ बॉलें ऐसी थी जो बुरी थी लेकिन वो बच गए, एक बल्कि वो बुरी बॉल पे विकेट भी ले गए. तो ऐसी सूरत में जब बॉलिंग वैसे ही क्लिक नहीं कर रही, बॉलिंग से विकेटें नहीं ली जा रही, तो क्या वजह है कि यासिर शाह को ट्राई नहीं किया गया?
देखिए और उसमें एक और चीज ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने विकेटें ली हैं, हालांकि छोटी ग्राउंड भी थी इसमें थोड़ा सा अगर आप स्पिनर को ना खिलाने का फैसला कर रहे थे तो इसका एक एक्सक्यूज ये था कि ग्राउंड छोटी है लेकिन उनके स्पिनर्स ने भी बॉलिंग की और वो फिंगर स्पिनर्स थे. आई थिंक यू गॉट टू बी ब्रेव. ब्रेव के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिशन और उससे पहले आपको अपनी टीम की एबिलिटी समझ आनी चाहिए तब जाके आप आगे बढ़ सकेंगे. इफ यू डोंट नो कि आपके पास कौन से वेपन्स हैं और किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कब इस्तेमाल कर रहे हैं बैटल इज नेवर गोइंग टू बी वन.
राइट आप क्या समझते हैं आमिर साहब, सोहेब मकसूद को इन 2 में से किसी एक मैच में मौका दिया जाना चाहिए था? वो साथ है टीम के 5वें-6वें नंबर का खिलाड़ी है, थोड़ा सा शुरू में चलने के बाद उसका टाइम ऐसा आ गया था कि वो नहीं चल रहा था लेकिन अब उसको मौका दिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले.
आई थिंक अब ये दो जो प्रैक्टिस मैचेस आ रहे हैं तो आई थिंक उसमें ये है कि अगर तो आपने रिवर्सल करना है यूनुस खान के रोल को
जी.
तो फिर आप इनको हारिस सोहेल की जगह फिल कर सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेट बॉल कर रहे हैं. अब मुझे यही आइडिया कि कहीं इनको भी तो सस्पेक्ट एक्शन है मतलब नहीं कर रहा. आई थिंक यू कैन बोल सो यू कैन स्मोक फ्रॉम दिस हारिस सोहेल फॉर द टाइम ही एक आधा मैच खिलाते रहे हैं और उनके दोस्त को खिलाते रहते हैं कि ओवर भी आपको मिल जाते हैं.
राइट आमिर सोहेल साहब, इट मस्ट बी वेरी हार्ड ब्रेकिंग टू सी हाउ आवर टीम इज परफॉर्मिंग. आपको ये टीम देख के और जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस है ये देख के क्या लगता है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में कहाँ खड़ी है?
और जब आप ये नॉकआउट मैचेस की बात करते हैं तो तगड़ा एफर्ट जो है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन आपकी यही होनी चाहिए उसके बाद लेकिन ये
ट्रू. आमिर सोहेल साहब, आप से हम मजीद बातचीत करेंगे. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और हमने अपने लिसनर्स से भी कहा था कि वो आपसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो हमें अपने सवालात टेक्स्ट कर सकते हैं और अपने सवालात भेज सकते हैं. वो सवालात हम आपसे पूछेंगे. आप हमारे साथ रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अपने सुनने वालों को एक गाना भी सुनाते हैं. और बिलाल, आप अगर हमें बता सकें एक मरतबा फिर से वो नंबर्स, और ये भी बता सकें कि आपके पास क्या सवालात हैं.
ओके जी लिसनर्स, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपके सवालात जो है हम पूछेंगे आज के हमारे गेस्ट से कि वो क्या कहते हैं उनके सवालात के बारे में. अगर आप कोई आमिर सोहेल साहब से सवाल पूछना चाहते हैं, उसके लिए अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में जाके नो से लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम और मुकाम लिख के भेजेंगे उसे 8282 पे. आपके सवालात हम पूछेंगे उनसे, आपके दिल में क्या बात है. अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं उनसे, वो आप हमसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कॉल के लिए 0404-111-96. ऑफर में भी आपकी कुछ कॉल्स लेंगे. अब अगर आप करना चाहते हैं ऑफर में कॉल, कुछ सवाल लिखवाना चाहते हैं हमको, आप लिखवा सकते हैं, हम उनसे पूछेंगे.
जी हां बिलाल, और मैं ये भी बता दूं कि अब हम लाइव कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे. आमिर सोहेल साहब हमारे साथ होंगे, आप लाइव कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं आमिर सोहेल साहब से. हमारे साथ रहिए, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका और एफएम सनराइज पाकिस्तान की आवाज. شازیہ منظور کی آواز ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عاطف. بتیاں بجھائی رکھ دی دیوا بڑے ساری رات, بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے سنا ایف ایم سن رائز پاکستان اور وائس آف امریکہ کے نیٹورک سے. بلال, ہم بات کر رہے تھے عامر سہیل صاحب سے اور بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں. ایم شیور ہمارے سننے والوں نے جو جو ہماری بات چیت ہوئی عامر سہیل صاحب سے اس کو یقیناً پسند کیا ہوگا.
جی بالکل کیا ہوگا, اور ابھی آپ کی کچھ ان کی کچھ کالز بھی آ رہی ہیں. میرا کیا ہے, کالز کی طرف جانا چاہیے یا میسج کی طرف پہلے جانا چاہیے؟
جی یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ جو بھی پہلے شامل کرنا چاہیں, کیونکہ کالز آ رہی ہیں تو ہم ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ میسجز پڑھتے ہیں.
اوکے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال پہ کون ہے, کہاں سے اور کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
جی اللہ کا شکر. کون بھائی, کہاں سے؟ جی علی, کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے سوال کے متعلق؟
جی آج کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان کا جو آج میچ مل رہا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, تو سن کے کافی اچھا لگ رہا ہے اور کافی خوشی کی بات ہے کہ عامر سہیل آئے ہوئے پاکستان پرفارمنس کے اندر.
جی جی,
تو میرا ایک سوال یہ ہے ان سے پوچھا جائے کہ پاکستانی ٹیم جب سلیکٹ ہو رہی تھی ورلڈ کپ کے لیے, تو کھلاڑیوں کو سلیکٹ بھی کیا گیا, کچھ کے فٹنس ٹیسٹ بھی لیے گئے, لیکن کچھ کھلاڑی تبدیل کر کے
بہت شکریہ علی صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ نے کہا جی کہ اگر بلاول کی جگہ عبد الرزاق کو لے جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. آپ کے سوالات ہم لکھ رہے ہیں عامر سہیل صاحب سے, جو ہی ہمارا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے ہم دوبارہ شامل کریں گے عامر سہیل صاحب کو بھی پروگرام میں, اور آپ کے جو ہمارے کالرز کے سوالات ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے. عامر سہیل صاحب سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, ان کا فون جو ہے وہ بھی بزی جا رہا ہے. یقیناً آج ان کے لیے بھی بڑا بزی دن ہوگا, کیونکہ بہت ساری میڈیا آؤٹ لیٹس, چاہے وہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا ریڈیو اسٹیشنز ہیں, وہ پاکستان کے جتنے بڑے کرکٹرز ہیں یا کرکٹ کی مینجمنٹ کا تجربہ رکھتے ہیں, پلاننگ کا تجربہ رکھتے ہیں, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بلال, یہ علی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی کہ پلیز,
انہوں نے کہا جی عبدالرزاق کو چانس کیوں نہیں دیا انہوں نے.
جی اس کا جواب میرا خیال ہے یہ دیا جا سکتا ہے بڑے وسوخ سے, یہ کہ ایک تو عبدالرزاق آپ کو یاد ہے ٹیم سے باہر اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ فٹنس ٹیسٹ کلیئر کرنے میں ناکام ہو گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنی فٹنس پر توجہ نہیں دی. اور عبدالرزاق کو ایز اے بالنگ آل راؤنڈر نہیں کھلایا جا سکتا, بیٹنگ میں ہز پرفارمنس ہیز بین ویری گڈ, لیکن ان کی بالنگ جو ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے. مطلب ہم آج سے 10-12 سال پہلے والے عبدالرزاق کو 2015 میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ویسی پرفارمنس دیں گے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں بلال. جی جی ضرور, میسج ایئر کیجیے اور پھر نیکسٹ کالر سے بھی بات کرتے ہیں.
اوکے جی, میسج پہ ہمارے ساتھ احمد ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس اسپنر آف اسپنر نہیں تھا پھر شعیب ملک بھی آپشن موجود تھی, انہیں کیوں نہیں لے کے گئے ساتھ؟ یہ
جی ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, شعیب ملک بھی پارٹ ٹائم آف اسپنر ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں. اس بارے میں کوئی واضح بیان نہیں آ سکا کہ کیوں شعیب ملک کو اس ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا.
اوکے نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون اور وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم.
جی کون کہاں سے؟ جی آتکار ریاض, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی کریں کریں.
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آتکار ریاض, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی شو, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں شکریہ.
ویسے آپ شو کی
आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करें तो मुझे कुछ समझ आ जाएगी आप क्या पूछना चाह रही हैं। जी नहीं नहीं, शो के टाइमिंग्स चेंज नहीं हुए हैं, ये पाकिस्तान में रात 9 से 10 बजे तक ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आप शायद इससे पहले जो हमारे शोज चल रहे थे उसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वो एक मुख्तलिफ वक्त में उस वक्त शो पेश किया जाता था, और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त शो 2 घंटे का हुआ करता था और हफ्ते में 1 दिन होता था, तो हमने 2 घंटे का एक शो करने के बजाय 1 घंटे के 2 शोज कर दिए हैं। तो आई होप ये नया टाइम भी आपके लिए सूटेबल होगा सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग बिलाल। अगले कॉलर की जाने बढ़ा जाए, और कोई मैसेज हो तो वो भी प्लीज शामिल कर लेते हैं।
ओके सर, अभी फिलहाल ये कॉल ड्रॉप हुई, अब नेक्स्ट कॉल आएगी तो उनको भी साथ शामिल कर लेंगे, देख लेंगे हमारे साथ कौन है और वो क्या कहना चाहेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ और क्या कहते हैं। जी वो अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल
है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है भैया, आप सुनाए आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती बस में वक्त निकाल के हमें कॉल की। रिक्वेस्ट के लिए भाई और भी शोज
जी, जी बिल्कुल, गाना हम जरूर किसी दिन चलाएंगे। माजरत ये है कि जिस दिन हम कुछ प्लान करके आए हुए होते हैं उस दिन जरा गाना बीच में अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। आपकी जो फरमाइश है वो सर आंखों पे है, लेकिन गाना चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है।
सर बेसिकली हमारे रेडियो पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी इनके लिए रखे गए हैं, रिक्वेस्टेड ट्रैक जो उनमें वो करके अपने दिन में 2 दफा वो चलते हैं, 2-2 घंटे के प्रोग्राम, उनमें वो अपने शोज की रिक्वेस्ट करके वहाँ पे सुन सकते हैं
जी। तो लेकिन ऐसा भी होता है ना बिलाल, ऐसा भी होता है ना कि बाज़ औक़ात हो सकता है ये जिन्होंने ये कॉल की थी इन्होंने अपना नाम क्या बताया था?
कोई मोहल साहब थे हमारे साथ, मोहल आई थिंक सो या कुछ।
अच्छा जी, बहरहाल नाम मैं भी इनका सही तरह से नहीं सुन पाया, हो सकता है इनको उस दौरान वक्त ना मिलता हो और इनका दिल चाह रहा हो कि कोई अपनी पसंद का गाना सुने, विच इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन माजरत ये है कि हम इस प्रोग्राम में फरमाइशें अमूमन लेते नहीं है, जिस दिन लेंगे उस दिन आपका गाना जरूर चलाएंगे।
नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन कहां से भाई साहब? जी अब्दुल बासित साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आज के सवाल के मुतालिक?
आज के सवाल के मुतालिक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आज एहसान आदम जो बिलावल भट्टी की जगह पे वहाब रियाज को चेक करने जाता तो बहुत अच्छा होता पाकिस्तानी टीम के लिए आगे आने वाले मैच में। और वहाब रियाज के पास एक तजर्बा भी है क्योंकि वो पिछला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान टीम के साथ खेल चुके हैं, वो जो मैच अहम था भारत के साथ
जी
उसके साथ मैच में भी वो खेले थे वहाब रियाज, और युवराज सिंह को आउट उन्होंने किया था। आज अगर वहाब रियाज को देख लेते क्योंकि वहाब रियाज एहसान आदम के मुतबादल बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं
जी हाँ, और उनके पास पेस भी उनके मुकाबले में ज्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाब रियाज बॉल भी तेज करते हैं, एहसान आदिल की बॉल इतनी तेज भी नहीं है, और आपने बिल्कुल सही कहा वहाब रियाज के पास तजुर्बा है। आपने उनके वर्ल्ड कप के मैच का रेफरेंस भी दिया जो कि बहुत ही प्रेशर मैच होता है, किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन दोनों साइड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत प्रेशर मैच होता है। जो आदमी उस मैच में अपने नर्व्स कंट्रोल करके अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है वो बाकी मैचों में भी दे सकता है। और अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो गई है जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा, तो एक और बहुत बड़ी खबर है इस मैच के हवाले से जो कि यकीनन हमारे सुनने वालों ने भी सुन ली होगी, लेकिन हो सकता है बाज लोगों को भी ये मालूम ना हो कि इस मैच में स्टार स्पोर्ट्स पर पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम शोएब अख्तर और इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम अब आज के दौर में अमिताभ बच्चन, वो दोनों मिलकर उस मैच की कमेंट्री करने वाले हैं। सो द गेम हैज गॉटन बिगर, वैसे तो पाकिस्तान इंडिया की मैच को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है, बट विद अमिताभ बच्चन इन द कमेंट्री बॉक्स ये मैच और भी बड़ा हो गया है। मैच का रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ दैट listening to cricket commentary by Amitabh Bachchan itself is a very big event.
Okay ji, zabardast, ye to bahut hi achhi cheez suna di aapne sir, ki achhi information mil gayi hai ki Amitabh Bachchan aur Pakistan ke jo fast bowler Shoaib Akhtar
तक मिलके एक कमेंट्री करेंगे। पाकिस्तान जो इंडिया का मैच हो रहा है उसकी ना
जी, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कमेंट्री करेंगे शोएब अख्तर और अमिताभ बच्चन।
ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कौन कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन? जी अल्लाह का शुक्र। कौन भाई, कहां से? जी वहीद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है जी वहीद भाई, क्या पूछना चाहेंगे आज आप आतिफ भाई से, हमसे और सुहेल भाई से?
बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो आतिफ भाई को अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सवाल मेरा ये है कि सुहेल मकसूद भी गए हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उनको भी बाहर उन्होंने बिठाया हुआ, अगर सुहेल सहारे सुहेल की जगह आज सुहेल मकसूद को
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, शोएब मकसूद को भी चांस मिलना चाहिए था, बल्कि शोएब मकसूद को एज अ मिडल ऑर्डर, डाउन मिडल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान में खिलाया जाता है, तो उनको बिल्कुल यकीनन ट्राई किया जाना चाहिए था, और वो चूंकि पिछले कुछ मैचेस में वो पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका होता कि वो आते, दोबारा से कुछ कॉन्फिडेंस गेन करते और हम उनको टेस्ट भी कर लेते। तो यकीनन बहुत सारी गलतियां हुई हैं पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट से, टीम सिलेक्शन में कप्तान से, और जो कमेटी वहां बैठी हुई है, कोच और बाकी जो मैनेजमेंट की कमेटी है उससे, यकीनन इन सारे प्लेयर्स को ट्राई किया जाना चाहिए था। लेकिन लगता कुछ यूं है कि जैसे पाकिस्तानी टीम अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको वापस रिदम में लाने की कोशिश कर रही है इन सारे मैचेस में खिला के, और मुझे डर ये है कि कहीं इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में और इतने प्रेशर में खेलने की वजह से ऐसा ना हो कि हमारे जो की प्लेयर्स हैं वो किसी इंजरी का शिकार हो जाएं। जैसे मोहम्मद इरफान हैं, मोहम्मद इरफान को रेस्ट दिया जाना चाहिए था, उनको नहीं खिलाया जाना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं मोहम्मद इरफान की परफॉर्मेंस को जज करने की अब मजीद जरूरत नहीं है। ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, वो पाकिस्तानी इस वक्त का जो बॉलिंग अटैक है उसमें ही इज द बेस्ट बॉलर।
बिल्कुल, मेरा हथियार पाकिस्तानी बॉलर में वही है इस वक्त, और जो पाकिस्तान वहां पे इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी पेस भी है, बाउंसिंग भी कर लेते हैं, और उनकी लेंथ जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज मिलता है इस चीज का।
जी अगर बिलाल हमारे पास कुछ और मैसेजेस हो तो मेरा ख्याल है वो मैसेजेस शामिल कर लिए जाएं।
सर अब्दुल रऊफ हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई एंड बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, और कह रहे हैं कि जी मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं क्या कहूं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने जो कह दिया है यही कहना काफी है, और यकीन कीजिए कि सिर्फ आपका नहीं, बहुत से मजीद लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखकर, लेकिन फिर भी हमारी टीम है जी, हमें इस खेल से और अपनी टीम से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है, तो हम फिर भी उम्मीदें अच्छी रखते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे लगता है खुदा ना करे कोई अपसेट हो गया तो हम तो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच सकेंगे।
कहते हैं कि पहले भी 1992 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान स्टार्टिंग में, मुझे एक मैसेज आया, कहते हैं उसमें भी जनाब मैसेज में पाकिस्तान मैच हारा था लेकिन आगे जाके जीतना शुरू हो गया था, क्या पता है कि इस दफा भी हम ऐसा ही हो जाए, गुमनाम मैसेज है एक।
देखिए अब हर मर्तबा मौजज़े नहीं हो सकते, पाकिस्तानी टीम पिछले वर्ल्ड कप में अपने पूल मैचेस हारी थी, लेकिन उस टीम में जावेद मियादाद थे, इमरान खान थे, रमीज़ राजा थे, इंजमामुल हक थे, उस टीम में वसीम अकरम थे, उस टीम में आकिब जावेद थे, उस टीम में मुश्ताक अहमद थे, ये वो प्लेयर्स हैं जी। वकार यूनुस नहीं थे, 92 का वर्ल्ड कप वकार यूनुस नहीं खेले थे, ही वाज इंजर्ड एंड ही कुडंट प्ले द वर्ल्ड कप। लेकिन ये जो बाकी नाम हैं, ये इतने बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया के, कि हमें ये सब कुछ देखते हुए भी ये उम्मीद थी कि ये प्लेयर्स इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि जिस दिन ये अपनी फॉर्म में आ गए उस दिन ये किसी दूसरी टीम को ठहरने नहीं देंगे, और यही हुआ। और जैसे अभी हम आमिर सुहेल साहब से बिलाल बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जावेद मियादाद का जो रोल था उस वर्ल्ड कप में उसको देखें तो उससे बहुत सबक सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को, कैसे जावेद मियादाद सिंगल्स निकालते रहे, रन पर बॉल लेते रहे और स्कोर बोर्ड को आगे चलाते रहे और उसके बाद वी हैड ग्रेट हिटिंग पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग. हमारे पास इंजमाम उल हक थे, हमारे पास वसीम अकरम थे, हमारे पास मोइन खान थे जो कि आके बहुत तेज रन करने की क्वालिटी रखते थे. कुछ ऐसी सूरत हाल इस टीम के पास भी है. इस टीम के पास शाहिद आफरीदी हैं, इस टीम के पास उमर अकमल हैं, इस टीम के पास और बहुत
अहमद शहजाद,
जी अहमद शहजाद हैं और सरफराज हैं. अहमद शहजाद तो ओपन करते हैं ना, तो हम जरा डाउन ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो आके हिटिंग करते हैं एंड में. तो हमारे पास तीन बहुत ही अच्छे हिटर्स मौजूद हैं. सिर्फ ये है कि हमारे जो पहले पांच बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी है कि वो स्कोर को 200 तक पहुंचाएं, कुछ पार्टनरशिप्स लगाएं और फिर ये जो हमारे तीन डेप्थ के प्लेयर्स हैं इनको 8 से 10 ओवर दें एंड में, जिसमें ये जाके बहुत एग्रेसिव बैटिंग कर सकें.
बिल्कुल ऐसी जबरदस्त. कोई सॉन्ग प्ले करना होगा सर अभी आपने?
जी बिल्कुल सॉन्ग प्ले करना है, लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम के खत्म होने में 7 मिनट रह गए हैं बिलाल, तो हम अभी भी अपने सुनने वालों से ये कह सकते हैं कि अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट करना चाहें तो हमें टेक्स्ट पर भी अपना पैगाम या अपना सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास 7 मिनट बचे हैं इनमें इनको शामिल कर दें. और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जी कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के वॉशिंगटन स्टूडियो से बराह रास्त. मैं हूं मोहम्मद आतिफ और साहिवाल में एफएम सनराइज के नेटवर्क से हमारे साथ हैं बिलाल जट. आप सुन रहे हैं एफएम सनराइज 96 और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर इस प्रोग्राम को. और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोग्राम आप नशरे मुकर्रर पे सुन सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू रेडियो नशरियात की फ्रीक्वेंसी 972 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़. एक्चुअली इट्स नॉट मेगाहर्ट्ज़ क्योंकि ये मीडियम वेव टेक्नोलॉजी खासी पुरानी हो गई है, तो मैं किलोहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस भूल गया हूँ. लेकिन आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं बुध और जुमेरात को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक.
कॉलर ले लें फिर सर, मेरा ख्याल है कॉलर आई है उनको से 10-7.
जी
जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम
जी. कौन भाई, कहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? जी अली,
मेरा सवाल ये है क्रिकेट के हवाले से कि हर टीम में कुछ ना बैकअप होता है.
अच्छा,
हमारी टीम में जो दो ओपनर गए हैं, तीसरे ओपनर का हमारे पास ऑप्शन है सरफराज,
ठीक है,
कंफर्म नहीं है.
ठीक है,
खुदा नहीं करते तो ऐसा हो जाता. बाकी 1992 की बात हो रही थी तो सेम पोजीशन थी, यही यही हाल था. तो एक मैच बारिश ने पॉइंट दिया, आगे प्लेयर फॉर्म से कम, बल्कि इंजमाम ने जो समीकरण खेला था न्यूजीलैंड के साथ वो भी यादगार इंजमाम की इनिंग पर आके सेवन बजाकर जो इंजमाम के साथ, और इंजमाम के मुतबादल जो अब हमारा प्लेयर को किया जा रहा है ना वो है शेर मकसूद.
ठीक है,
उनका इंजी भाई की तरह है, वो थोड़ा सा मैच को ले जा सकते हैं.
ठीक हो गया.
और हमारी एक सवाल यह है कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये एनर्जी आनी होगी और करनी होगी जो कोचेज है उनको,
क्योंकि
खिलाड़ी तो अगर एक अच्छा बैट्समैन खड़ा है, स्कोर है, तो वो कोशिश करे कि मैं मैच को लेकर निकलू, ना कि वो पूरा प्रेशर अपने ऊपर डेवलप कर ले.
ठीक है,
प्रेशर से टीम को निकाले.
ठीक है, बहुत शुक्रिया.
कोशिश करे कि हिम्मत भी करनी चाहिए पक्षर टीम को, अगर हमारा मैसेज आता है तो वो कोशिश करे कि मैच को आगे लेकर जाए, मैच को प्रेशर से निकाले. प्रेशर में जो खिलाड़ी खेलता है प्रेशर में आकर और प्रेशर से निकल कर आगे जाता है वो ये खिलाड़ी बनता है.
बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग. थैंक यू सो मच.
जी बहुत शुक्रिया अली साहब आपकी कॉल का, और आपने जो बातें की वो भी यकीनन बहुत अहम थी. और आपने बिल्कुल सही कहा जी कि प्रेशर जब बन जाता है तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करें, और खासतौर पर सीनियर खिलाड़ियों को ये करना चाहिए. ऐसी पिचेस हैं जिनके ऊपर बॉलर्स को इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, तो खासतौर पर ऐसी पिचेस पर बैट्समैन को चाहिए है कि वो खुलकर और कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करने की कोशिश करें. प्रोग्राम के खत्म होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त रह गया है, तो मेरा ख्याल है अब अपने सुनने वालों से इजाजत ली जाए जी. आप तमाम लोग जिन्होंने हमारा आज का प्रोग्राम सुना आपका बहुत शुक्रिया, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, यही वक्त होगा, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ होगा प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज में. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं आपके साथ हूंगा, और साहिवाल में एफएम सनराइज 96 पर हमारे साथ आज थे बिलाल जट. और कल भी वैसे बिलाल आप ही बता दें कल कौन होगा.
अभी कुछ कर
कंफर्म नहीं है।
अच्छा जी, अभी कुछ
वैसे तो मैडम नजमा होगी, मैडम नजमा होगी और वो आएंगी इंशाल्लाह। उनसे आज भी उन्होंने आना था तो आज मैं आ गया उनसे, मैंने कहा था आज मैं करूंगा, उन्होंने कहा ठीक है कि सुबह मैं आ जाऊंगी। मैं कहा ठीक है, तो इंशाल्लाह सुबह वो आपसे बातचीत करेंगे, जो भी जिस लिहाज से भी जो भी टॉपिक कल का डिसाइड किया गया उसके साथ।
यकीनन। तो टाइम टू से गुड बाय जी, जाते जाते हम आपके लिए गाना भी प्ले करना चाहते हैं। आप तमाम लोग जिन्होंने हमारा आज का प्रोग्राम सुना, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद आतिफ और बिलाल जट को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔